हरे कृष्ण। तो महाराज का आदेश था कि 3 महीने का कोई ब्राह्मण दीक्षा के लिए कोर्स किया जाए, जिसमें क्योंकि होता क्या है कि कई बार लोग ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं बता रहता कि ब्राह्मण दीक्षा का अर्थ क्या है या उसके बाद दीक्षा के उपरांत क्या हमें करना चाहिए, ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद और क्या करना चाहिए जो हमने पहले नहीं किया। तो इसमें जिम्मेदारी वैसे अधिकारियों की होती है, तो लीडर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा दें। नहीं तो कई बार देखा गया है कि अभी तक जो हम देखते आए हैं, मतलब ब्राह्मण दीक्षा लेने के उपरांत जो हमने देखा कि क्या क्या समस्या आ रही है, एक तो गायत्री मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं लोग, गलत स्थान में करते हैं, गलत समय में करते हैं, इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है और सालों साल तक करते रहते हैं फिर भी कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि गलत उच्चारण करने के कारण, गलत स्थान में उच्चारण करने के कारण, गलत समय में उच्चारण करने के कारण, दिशा का ध्यान न रखते हुए, तो कई बातें हैं। और इसलिए ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद भी भक्त लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, तो कई कारण है। तो ये सब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। बाकी सिलेबस आपको दिया था हमने, कागज प्रभावित सिलेबस दिया था ना, तो ये सारा हम लोग टॉपिक्स इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। समय हमारे पास कम रहेगा 3 महीने का। एक और दे दीजिए सिलेबस इनको, आपके पास है एक्स्ट्रा है। तो ये जो यहाँ पे लिखे हैं टॉपिक्स, हो सकता है कि इसी ऑर्डर में हम ना लें लेकिन टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन हो सकता है कि टॉपिक्स हम लोग इसी ऑर्डर में ना लें लेकिन सारा टॉपिक्स कवर करने का हम प्रयास करेंगे। और साथ में मेरे साथ सुध गोस्वामी प्रभु भी रहेंगे जो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाएंगे डीटी वर्शिप का, बेसिक गाइडलाइंस जो है, डिटेल में तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो दीक्षा के बाद ही होगा, तो उससे पहले क्या क्या जानकारी होनी चाहिए ताकि हम लोग डीटी वर्शिप को गंभीरता से ले पाएंगे, तो उसके लिए वो एक बेसिक गाइडलाइन देंगे। तो उसके लिए वो पूरा एक सिलेबस तैयार कर रहे हैं एक तरह से, इसमें लिखा भी हुआ हमने एब्रीवेटेड मैनुअल फॉर डीटी वर्शिप या बेसिक गाइडलाइंस डीटी वर्शिप का, तो वो हमने उनको कहा करने के लिए क्योंकि वो प्रैक्टिकली सीख रहा है। सुध गोस्वामी प्रभु मायापुर में, पंकज अंग्रह प्रभु जानवास प्रभु और नरसिंह कवच प्रभु, इनसे वो प्रैक्टिकली सीख रहा है 4 महीने, तो इसलिए उनको काफी एक्सपीरियंस हो गया इसमें। अब तो वो खुद कर भी रहे हैं सेवा बहुत अच्छा। फिलोसफिकल पार्ट मैं कवर करूंगा उसमें और प्रैक्टिकल पार्ट वो कवर करेंगे, तो इसलिए उससे क्या होगा वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपने देखे कई टॉपिक्स देखे, गायत्री फिलॉसफी दीक्षा वगैरह, ये तो हम धीरे धीरे कवर करेंगे। और दूसरा ये 3 महीने अगर हो भी जाते हैं, हमारे पूरे हो जाते हैं, तो उसमें कोई मतलब कन्फर्मेशन नहीं है ब्राह्मण दीक्षा का, क्योंकि अल्टीमेटली महाराज के ऊपर है, लेकिन फिर भी इसके बारे में नॉलेज रखना अच्छा है, तो इससे हो सकता है कि महाराज और थोड़ा कंसिडर करें, फेवरेबल हो जाए महाराज, तो इसलिए कि हम ये ध्यान रखें कि 3 महीने हमने किया जरूर अटेंड, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसके बाद तुरंत हमारी ब्राह्मण दीक्षा हो जाए, वो फिर भी महाराज के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये जो है इसमें आवश्यकता रहेगी, बहुत जो दीक्षा के लिए विचार किया जाता है, ब्राह्मण दीक्षा के लिए कई बार होता है, कई बार सोचते हैं भक्त लोग कि शायद उसके साथ फेवर किया जा रहा है इसलिए उसको दीक्षा मिल गई, या इसको दीक्षा मिल गई क्योंकि इसके लिए रिकमेंडेशन हो गया, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो जनरली इसका लॉ के हिसाब से अल्टीमेटली प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं हरिनाम हो या ब्राह्मण दीक्षा हो, लेकिन फिर भी कई चीज़ें मैटर करते हैं जो जिसके बेसिस पे ये देखा जाता है। एक तो जैसे मॉर्निंग साधना है, ये बहुत ज़रूरी है मॉर्निंग साधना, जिन भक्तों की कमज़ोर है, और विशेष रूप से जप जो है, चैंटिंग जो है, ध्यानपूर्वक जप करना, सब भक्तों के साथ बैठ के सुबह के प्रोग्राम में आना, और घर पे हैं तो घर पे मंगल आरती करना, सारी प्रेयर्स प्रार्थनाएं जो हम लोग यहाँ बोलते हैं वो सारी प्रार्थनाएं आप अपने घर पे बोल सकते हैं, और कम टाइम फ्रेम रखकर, जरूरी नहीं कि 5 घंटे आपको लगातार करना है, अगर आप घर पे हैं जो भी प्रैक्टिकल है जितना हो सके जल्दी से जल्दी हो सके प्रयास किया जा सकता है। और इसके अलावा कोई आपके पास जिम्मेदारी या सेवा होनी चाहिए। जैसे कई बार ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद भी लोगों के पास जिम्मेदारी नहीं है, सेवा नहीं है। टेम्पल से रिलेटेड सेवाएं हो, प्रीचिंग से रिलेटेड सेवाएं हो, या तो वो भक्त प्रचार कर रहा हो तो बहुत ही अच्छा है, है ना। तो ब्राह्मण का एक कार्य भी है पढ़ाना, सबको ज्ञान बांटना, या प्रचार के कार्य में नहीं है तो कोई ना कोई सेवा है उसके पास। जैसे किसी के पास कुकिंग की सेवा हो सकती है, किसी के पास बर्तन साफ करने की सेवा हो सकती है, कई प्रकार की सेवाएं होती है मंदिर में। जैसे माताओं में आप लोग गारलैंड्स बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, कुकिंग करते हैं डीटी किचन में जाकर। तो सेवाएं होनी चाहिए सबके पास, कोई ना कोई सेवा होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की सेवा हो जो टेम्पल में है, जो बाहर से आते हैं वीकेंड्स में टाइम देना चाहते हैं वीकेंड्स में दे सकते हैं। हफ्ते में एक दिन जरूर आना पड़ेगा मंदिर, और मंदिर में आके फिर आप डीटी वर्शिप या डीटी वर्शिप के एरिया में, यानी कि डीटीज के एरिया में, ऑल्टर नहीं तो किचन एरिया में, कहीं ना कहीं सेवा में जुड़ना है। जैसे कि सुध गोस्वामी प्रभु कह रहे हैं कि जो अभी वो मैनुअल तैयार कर रहे हैं उसमें वो प्रयास करेंगे सब भक्तों को लगाने के लिए, सबसे पहले वो जो डीटीज के यूटेंसिल्स हैं, बर्तन है, वो सबसे धुलवाएं टर्न बाय टर्न। जैसे नीचे किचन है तो वहां भक्तों को लगाया जाता है, तो उसमें ब्राह्मण दीक्षा की तो आवश्यकता नहीं पड़ती बर्तन धोने के लिए, लेकिन कम से कम हरिनाम दीक्षित हो और नीचे किचन में बर्तन वगैरह धो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे एंट्री करें हम, नहीं तो हो क्या रहा है दीक्षा लेके सीधे ऑल्टर में पहुंच जाते हैं सब, है ना। और वहां क्योंकि पता नहीं रहता कि क्या करना है तो फिर वो सीख ही नहीं पाते कुछ, और सिखाने वाला व्यक्ति भी कोई नहीं होता है क्योंकि सब लोग अपनी अपनी सेवा में व्यस्त रहते हैं। तो इसलिए एक ये आवश्यक होगा, इसमें ये देखी जाएगी कि आपके पास सेवाएं हैं कि नहीं, और नहीं अगर सेवा तो फिर सेवा ले, है ना। हफ्ते में एक बार आकर कोई प्रैक्टिकल सेवा करें मंदिर में आके, है ना। जैसे चौपाटी में क्या है, वहां भी प्रीचिंग चल रहा है बहुत बड़ा, है ना, लेकिन संडे को सारे जो जितने भी भक्ति वृक्षा ग्रुप्स हैं वो मंदिर आते हैं, मंदिर में आके सब्जी काटते हैं, कुकिंग करते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, बर्तन धोते हैं, जितने माता जी से उसे कुकिंग करते हैं किचन में जाकर, जो संडे फीस का प्रोग्राम है उनके लिए सब प्रसाद बनाते हैं, तो सारी सेवाएं करते हैं। लेक्चर्स भी होते हैं, फिर 3-4 घंटा लेक्चर होता है उनका, लंबा लेक्चर होता है, है ना। तो इस तरह से सब इन्वॉल्व करते हैं वो लोग। तो ऐसे 2500-3000 डिवोटीज हर संडे आते हैं, तो नए क्राउड के लिए वो भागते नहीं है, जो रेगुलर डिवोटीज हैं उन्हीं को ही बुला लेते हैं वो, तो उसी में संडे का प्रोग्राम जो है पूरा फुल हो जाता है। तो हमें भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाना है ताकि अभी से हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें इसके लिए। भले हम कितना भी प्रीचिंग करें, हफ्ते में एक दिन जरूर आए मंदिर, और संडे को आ सके तो बहुत अच्छा है, महाराज की भी यही इच्छा है। तो ये बहुत आवश्यक होगा कि हम लोग मंदिर आके कोई ना कोई सेवा लें आकर, या तो प्रीचिंग स्टॉल में रहें या फिर टेम्पल में जैसे लोगों को रिसीव करना हुआ, गाइड्स की हमें आवश्यकता पड़ती है, वॉलंटियर्स की आवश्यकता पड़ती है, जो मंदिर दर्शन कराने के लिए लोग चाहिए हमें। तो कहने का अर्थ यह है कि ब्राह्मण दीक्षा का मतलब यह है कि और अधिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कहने का तात्पर्य है। और कोई ना कोई सेवा होनी चाहिए हमारे पास, भले ही बर्तन मारने की सेवा हो लेकिन सेवा होनी चाहिए। और साथ में क्लीनलीनेस, पंक्चुअलिटी, सफाई रखना और समय पर पहुंचना टाइम पे, पंक्चुअलिटी, डीडी वर्षिप में प्रभुपाद कहते हैं ये दोनों चीजें बड़ी आवश्यक हैं, पंक्चुअलिटी और क्लीनलीनेस। जहां पर ये दो चीजें की कमी होगी वहां पर समस्या खड़ी हो जाएगी, केवल ऑल्टर एरिया में नहीं बल्कि अपने घर पे भी, कमरे भी आपके साफ सुथरे हों और जहां पे हम रहते हैं वो साफ सुथरा हो, है ना, टॉयलेट्स हो, वॉशरूम हो, बाथरूम हो, कपड़े हैं, तो ये सारा का सारा जो है इसमें देखा जाएगा। और वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार का पालन करना, क्योंकि तो कई बार क्या होता है जब कोई हरिनाम से ब्राह्मण दीक्षा लेता है तो फिर वो सीनियरिटी की ज्यादा कंसिडरेशन होती है, लेकिन शिष्टाचार हम भूल जाते हैं आपस में, व्यवहार भक्तों का वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे एक बार लोकनाथ महाराज किसी को ब्राह्मण दीक्षा दे रहे थे, तो महाराज ने ब्राह्मण दीक्षा देते हुए कहा कि अब वैष्णव बनने का प्रयास करो, है ना। तो ये ब्राह्मण दीक्षा तो केवल एक बिगनिंग है, शुरुआत है, अंत नहीं है। तो ब्राह्मण दीक्षा के हम प्रोसेस में डाले जाते हैं, ब्राह्मण दीक्षा जब लेते हैं तो उसमें प्रोसेस में डाले जाते हैं ताकि हम अच्छे ब्राह्मण बने पहले, और उसके बाद फिर उसके बाद वैष्णव बनने की तैयारी करें। जो हमारा पूरा देवी वर्णाश्रम धर्म सिस्टम है, वर्णाश्रम धर्म की आज हम बात कर रहे थे सुबह भी, तो देवी वर्णाश्रम धर्म में ये जो देवी वर्णाश्रम धर्म है बेसिकली प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोग वैष्णव बन सकते हैं। वैष्णव बनने के लिए निश्चित रूप से वैष्णव की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, सिर्फ प्रोसेस फॉलो करने से तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसके लिए अगर देवी वर्णाश्रम धर्म का कोई पालन करता है तो फिर सब कुछ हमें, सब कुछ हमारे लिए अनुकूल बनने लगता है। तो इसलिए वर्ण का पता होना चाहिए, किस वर्ण में हम लोग हैं और कौन से आश्रम में हैं, आश्रम निर्धारित होना चाहिए, वर्ण निर्धारित होना चाहिए, और इसके द्वारा हमें प्रचार या भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। तो देवी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से, प्रोसेस को फॉलो करने से धीरे धीरे कोई जो है वैष्णव के प्लेटफॉर्म में पहुंचता है। ये प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन का। देवी वर्णाश्रम, वैष्णव वर्णाश्रम धर्म अपने आप में स्पिरिचुअल नहीं है, वर्णाश्रम धर्म अपने आप में स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन जब देवी शब्द का उपयोग किया जाता है तो उसको स्पिरिचुअलाइज किया जाता है और धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन से कोई वैष्णव बनता है। जैसे बड़ा एक अच्छा एक प्रसंग है, इसे आप समझ पाएंगे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर के एक शिष्य थे जो राधा कुंड गए थे, बाबा जी से मिले थे वहां पर। तो वो बाबा जी ने कहा कि आपके गुरु महाराज तो शूद्रों को, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं हुए हैं उनको भी ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है, है ना, ये नया आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया है, सबको ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं, ये क्या है। तो इन्होंने पूछा उनसे, बाबा जी से पूछा, ठीक है हमारे गुरु महाराज तो ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं लेकिन वो तो पांच रात्रि की विधि के अनुसार दे रहे हैं, और ये भी संस्कार है जिसके द्वारा धीरे धीरे क्रमशः कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनने लगता है इस संस्कार के द्वारा, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोग तो पहले दिन ही वैष्णव भेज दे रहे हैं, नए लोगों को भी वैष्णव भेज दे रहे हैं, है ना। हमारे गुरु महाराज तो वर्णाश्रम धर्म में डाल रहे हैं लेकिन आप तो सीधा ही वैष्णव भेज दे रहे हैं, क्योंकि जो गोपिन और कंथा जो पहना हुआ बाबा जी वेश का मतलब यह है कि परमहंस लेवल पर है, तो आपने कनिष्ठ को भी परमहंस बना दिया, ठेले वाले को, फूल बेचने वाले को, सब्जी बेचने वाले को भी अपने परमहंस बना दिया पहले दिन ही, उसको वेश बना के। तो प्यूरिफिकेशन से प्रोसेस वो गुजरा ही नहीं, वो सीधा ही वैष्णव बन गया पहले दिन ही। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, हमारे गुरु महाराज ने नम्रता से उन्होंने संन्यास आश्रम को ग्रहण किया, ये बताने के लिए कि हम सब तो वैष्णव के सेवक हैं, वैष्णव के दास हैं, हम अभी वैष्णव नहीं बने हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, अभी मैं वैष्णव नहीं हूं, वैष्णव है भक्ति ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वो वैष्णव है, तो मैं तो उनकी सेवा कर रहा हूं संन्यास आश्रम में रहकर और वैष्णव बनने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसलिए प्रभुपाद ने देवी वर्णाश्रम धर्म पर इतना जोर दिया है, और प्रभुपाद ने बताया कि देवी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने से समाज में हर व्यक्ति सुखी रहेगा। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के संवाद में हम देखते हैं कि महाप्रभु ने इसको स्वीकार नहीं किया, वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, एहो भाई आगे कहो हार, उन्होंने कहा दिस इज एक्सटर्नल, आप आगे बढ़ो, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, आगे बढ़ो। तो इस महापुरुष ने रिजेक्ट कर दिया एक तरह से, लेकिन महापुरुष ने रिजेक्ट क्यों किया है, इसलिए क्योंकि महापुरुष कृष्ण कथा और शुद्ध भक्ति के बारे में सुनना चाहते थे रामानंद राय से, वो रामानंद राय से वर्णाश्रम धर्म के बारे में सुनने के लिए नहीं आए थे जगन्नाथपुरी से। तो लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि भगवान कृष्ण जो गीता में बताया है वर्ण के बारे में वो गलत हो गया, उसका अर्थ यह है कि वर्णाश्रम धर्म है प्यूरिफिकेशन के लिए, और उस प्यूरिफिकेशन के प्लेटफॉर्म से कोई गुजरता है तो फिर वो क्या होता है, वैष्णव के धरातल पर पहुंच जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के संवाद बेसिकली उनके लिए है जो वास्तव में वर्णाश्रम धर्म से ऊपर उठ चुके हैं, जो वर्णाश्रम धर्म से ऊपर उठ चुके हैं, तो वो समझ पाएंगे रामानंद राय के संवाद को। तो प्रारंभ में ये आवश्यक है, इसलिए ग्रेजुअल प्रोसेस से गुजरना और उसके बाद फिर अथॉरिटी को फॉलो करना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अथॉरिटी को फॉलो अगर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ब्राह्मण का एक लक्षण ये भी है कि वो नम्र होता है, तो हमारा कोई ना कोई अधिकारी होना चाहिए, है ना, आजाद नहीं होना चाहिए, मतलब स्वतंत्र, जैसे हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में स्वतंत्रता यही है कि हमेशा हम निर्भर रहें। आज देखिए ब्रह्मा जी के बारे में बताया प्रभुपाद ने तात्पर्य में, स्वराट उनको बताया, उनको स्वराट बता दिया है भागवत में, लेकिन वास्तव में तो असली स्वराट तो कृष्ण है, तो वो कैसे स्वराट हो गए, वो इसलिए स्वराट हो गए क्योंकि ब्रह्मा जी कृष्ण की हर बात को सुनते हैं, ब्रह्मा जी कृष्ण की हर बात को सुनते हैं, इसलिए उनको स्वतंत्रता दी है भगवान ने, विश्वास रखते हुए ब्रह्मा जी के ऊपर कि ये गलत कोई गलत कदम नहीं उठाए हैं। और इस तरह से ब्रह्मा जी को अधिक स्वतंत्रता मिली है। कोई घर पे अगर बच्चा अगर लायक होता है और अवज्ञा नहीं करता है तो उसको और अधिकार प्राप्त होता है घर पे। इसी तरह से व्यापार में भी, कोई अगर बिजनेस में और कोई अगर आपके आने वाले वो है पीढ़ी है, उनको आप बिजनेस ट्रांसफर करेंगे, उन्हीं को करेंगे ना जिस पे आपको विश्वास है कि ये धन का दुरुपयोग नहीं करेगा, है ना, बिजनेस ठीक चला पाएगा, ये जिम्मेदार व्यक्ति है, तो उसको बिजनेस जो है दिया जाता है। तो इसी तरह से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है जब हम लोग शरणागत होते जाते हैं। लेकिन जब तक हम शरणागत नहीं होंगे तो फिर हर कई प्रकार के हमारे पर पाबंदियां डाली जाती हैं, हमारे मन को नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है। तो ये कुछ हम लोग देखेंगे पॉइंट्स ब्राह्मण दीक्षा के लिए। इन पॉइंट्स को ब्राह्मण दीक्षा के लिए अगर कोई रिकमेंडेशन जाएगा तो इस बेसिस पे जाएगा, है ना। तपस्या का जीवन, साधना की जब हम बात की, हमने जब साधना बोला तो इसका मतलब क्या है, तपस्या का जीवन। और एक पॉइंट और इसमें, अत्याहार, ये भी लिख लीजिए एक और, अत्याहार। अत्याहार का मतलब ये है कि अत्याहार का अर्थ ये है कि एक्यूमुलेशन, ब्राह्मण जो है कभी भी एक्यूमुलेट नहीं करता है, अत्याहार नहीं करता है, संग्रह नहीं करता। अगर कोई संग्रह करने की किसी प्रवृत्ति है तो खुद ही जान जाए कि वो अभी ब्राह्मण नहीं है, या तो उसमें वैश्य की प्रवृत्ति है, और शूद्र है तो फिर वो सामान भी रखेगा था तो सब इधर उधर उथल फुथल हो जाएगा। लेकिन जो वैश्य है वो संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, और लिया और लिया और लिया, वो कपड़े इकट्ठे करेगा, है ना। तो क्या है, या तो तैयारी कुछ कर रहा है किसी अन्य आश्रम की, वो आश्रम की तैयारी नहीं कर रहा वो, क्योंकि कोई बोलेगा हम तो गृहस्थ आश्रम है इसलिए हमें आवश्यकता पड़ती है। नहीं, गृहस्थ आश्रम में भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आप संग्रह नहीं करेंगे, आप उतना ही रखेंगे जितना की आवश्यक है, घर में जितनी आवश्यकता उतना ही रखेंगे। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अब हम तो गृहस्थ बनने वाले हैं तो हम लोग संग्रह कर सकते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि रूप गोस्वामी ने बताया कि जितना आवश्यक है अपने इमरजेंसी के लिए या घर में जितनी आवश्यकता है उतना रखें, बाकी सब भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए बहुत आवश्यक है। संग्रह करने की प्रवृत्ति जब आ जाती है तो फिर वो ब्राह्मण नहीं रह जाता, वो ब्राह्मण नहीं है फिर वो। तो ये सिम्टम्स है ना, किसी के वर्ण को पहचाना जा सकता है उसके लक्षणों से, गुणों से। जो बहुत दक्ष होते हैं, वैष्णव लोग होते हैं, तो वो देखते ही बता देंगे कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है या वैश्य है या शूद्र है या क्षत्रिय है, उसका चेहरा देख के बता देंगे, उसके क्रियाओं को देखकर बता देंगे ये ब्राह्मण नहीं है, ये वैश्य है या ये शूद्र है, जो भी है। कलयुग में तो अधिकांश लोग शूद्र ही है, कलौ शूद्र संभव, है ना। लेकिन प्रभुपाद ने बताया कि हम लोग ऐसी संस्था बना रहे हैं जिसमें हम अधिक से अधिक ब्राह्मण बना सके। सप्लाई कम है, शॉर्टेज कम है ब्राह्मणों की, प्रभुपाद ने बोला समाज में, इसलिए हमें लोगों को प्रशिक्षित करना है। एक प्रशिक्षण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा किसी को ब्राह्मण बनाया जा सकता है, इसलिए प्रभुपाद ने प्रशिक्षण देके है कई लोगों को, मलेच्छों को, यावनों को, चंडालों को भी ब्राह्मण के स्तर पर लेकर आए। तो ट्रेनिंग के द्वारा, बाई ट्रेनिंग एंड कल्चर। प्रभुपाद ने एक जगह बड़ा अच्छा बताया कि अगर मान लीजिए कोई बहुत पढ़ा लिखा है भौतिक दृष्टिकोण से, लेकिन अगर उसमें कल्चर नहीं है, उसमें कल्चर नहीं है तो उसको हम नहीं लेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत कल्चर्ड है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है भौतिक दृष्टिकोण से, तो उसको हम ले लेंगे। लेकिन सबसे अच्छा कैंडिडेट क्या होगा, अगर कोई पढ़ा भी हो और साथ में कल्चर्ड भी हो, वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो प्रचार कर सकता है और लीडर बन सकता है संस्था के लिए, समाज के लिए। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अगर कल्चर भी हो कम से कम, तो वो इस आंदोलन में बहुत ही उपयोगी कार्य कर सकता है। इसलिए कल्चर होने का मतलब क्या है कि ब्राह्मणिकल क्वालिटीज डेवलप करना, कल्चर होने का मतलब ये है। तो इसलिए हमारे समाज में, संस्था में शिक्षा और कल्चर, एजुकेशन और कल्चर दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। तो मेटेरियल एजुकेशन नहीं है अगर, तो स्पिरिचुअल एजुकेशन की आवश्यकता है फिर, और साथ में फिर कल्चर की तो आवश्यकता है ही, इसलिए हमारा जो सिद्धांत ये है कि हम लोग फिलॉसफी को भी एक्सेप्ट करते हैं, साथ में उसके प्रैक्टिस को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। केवल यदि हम केवल किताबें पढ़ते रहे और उसको लागू ना करें अपने जीवन में, या चर्चा करते रहे केवल, तो उसको लागू करना पड़ेगा। तो जब लागू करेंगे तो वो क्या हो जाता है, विज्ञान बन जाता है, वो साइंस बन जाता है, और उसी साइंस को भक्ति कहते हैं। तो हमारे आंदोलन का उद्देश्य, कई बार पूछा जाता है हमारे पर्पस क्या है इस स्कॉन का, तो अधिकांश लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राह्मण बनाना। लेकिन वास्तव में देखा जाए हमारे संस्था का असली उद्देश्य है वैष्णव बनाना, और वैष्णव बनाना इतना आसान नहीं है ना। ब्रह्मा जी का पद मिल जाएगा लेकिन वैष्णव बनना बहुत मुश्किल कार्य है। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है कोई अगर वैष्णव बनता है। तो अधिकांश लोग जो हम हैं, जो अभी तक हमारी जो स्टेज है, हम लोग वैष्णव जैसे दिखते हैं, अभी वैष्णव है नहीं, है ना। भक्ति ठाकुर ने बड़ा अच्छा बताया, जहा धर्म में भक्ति ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव प्राय का मतलब कि वी लुक लाइक वैष्णव बट वी आर नॉट वैष्णव। हम देखने में लगते हैं वैष्णव, तिलक लगाया, कंठी माला है, सब कुछ देखने में लग रहे हैं वैष्णव, लेकिन है नहीं अभी वैष्णव, या फिर वैष्णवाभास है। वैष्णवाभास का मतलब मध्यम अधिकारी भक्त जो होता है तो उसको वैष्णवाभास कहते हैं। लेकिन उत्तम वैष्णव वास्तव में वो वैष्णव जो उसके दर्शन करने मात्र से ही सब पवित्र होने लगते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें वैष्णव के धरातल अगर पहुंचना है तो ब्राह्मण के प्लेटफॉर्म से गुजरना पड़ेगा। बिना ब्राह्मण बने कोई वैष्णव नहीं बन सकता है। कोई सोचे कि मैं सीधा वैष्णव बन जाऊंगा, ये संभव ही नहीं है। बिना ब्राह्मण बने कोई वैष्णव नहीं बन सकता है। इसलिए देवी वर्णाश्रम धर्म हमें मौका देता है ब्राह्मण बनने का। देवी वर्णाश्रम धर्म हमें मौका देता है ब्राह्मण बनने का। तो इसलिए ये सारी बातें हम जो है ना कंसिडर करेंगे, जो हमने बताई आपको 9 या 10 बातें बताई आपको, हमने 10 बातें बताई, तो ये 10 पॉइंट्स हम लोग कंसिडर करेंगे किसी के ब्राह्मण दीक्षा के लिए। और क्योंकि हम किसी को दोषारोपण नहीं कर सकते कि आपकी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हो रही इस बार, क्योंकि हमने उसको बताया नहीं कि क्या आवश्यकता है, उसको पता ही नहीं। अगर पता हो तो शायद वो डेवलप करें। इसलिए महाराज ने सोचा कि हमने कुछ क्लासेस होने चाहिए जिसमें जो है सीख सके। हरे कृष्ण। तो इसमें बहुत आवश्यक है डिसिप्लिन की, अनुशासन है ना। अनुशासन, अनुशासन का मतलब ये होता है जो शासन में रहना चाहे। प्रभुपाद कहते हैं शिष्य का अर्थ क्या होता है, शिष्य शस्त्र धातु से आया है, शस्त्र धातु से शस्त्र मिलता है, शस्त्र धातु से शास्त्र है, शस्त्र धातु से शिष्य है, और शस्त्र धातु से शासन भी है। हम लोग अनुशासन में जब रहना चाहेंगे तब हम शिष्य कहलाएंगे। कई भक्त लोग पूरी आजादी चाहते हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम फ्री हैं, है ना, फ्री बर्ड, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कोई हमें नहीं पूछने वाला है, कहीं भी उड़ सकते हैं जब चाहे। तो इसका मतलब वो अनुशासन नहीं चाहते हैं अपने जीवन में। तो उससे क्या है, जब अनुशासन नहीं होगा तो फिर क्या ब्राह्मण बने, क्या वैष्णव बने, है ना। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, और प्रभुपाद इस पर बहुत जोर देते थे। मॉर्निंग साधना की बात करते हैं तो मॉर्निंग साधना में जैसे प्रभुपाद जब वृंदावन में थे तो वहां पर महाराज थे नवगेंद्र महाराज, उस समय सेवक थे उनके। तो प्रभुपाद ने सुबह करीब 4 बजे 4:30 बजे के बाद प्रभुपाद ने बोला कि जाओ देख के आओ मंदिर में कितने लोग मंगल आरती में आए हैं। तो वो देखने गए तो प्रभुपाद को रिपोर्ट दिया उन्होंने कि इतने ही भक्त आए करके। तो प्रभुपाद ने कहा क्यों, प्रेसिडेंट को बुलाओ। प्रभुपाद ने कहा, सो धनंजय प्रभु प्रेसिडेंट थे वहां के, अभी वो उसमें है MBT देखते हैं। तो धनंजय प्रभु को बुलाया तो उन्होंने कहा कि नहीं वो थके हुए थे, ये थे वो थे, जैसे भक्त लोग अक्सर कहते हैं थके हुए हैं। तो प्रभुपाल ने बहुत झट से उत्तर दिया। प्रभुपाल ने कहा कि अगर आप मंदिर में रह रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं, तो हमें सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मंदिर क्या है, प्रभुपाल ने कहा होटल नहीं है। प्रभुपाल ने कहा दिस इज नॉट होटल। जैसे कई बार हम बेसिस खोलते हैं भक्त लोग, तो बेसिस हमारे खोलने का पर्पस क्या है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए, ताकि वहां पे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है भक्तों को कि ये जॉब करते हुए भी वो ऐसे जगह में रह रहे हैं जो मंदिर के समान ही है, या ट्रांसिट पीरियड है मंदिर के लिए, है ना। तो ऐसे जगह पे कोई रहता है, अगर बेस में रहता है या फिर कोई मंदिर में रह रहा है, तो उसको होटल ही बनाना है उस स्थान को, है ना, कि उसको लगता है यहां पर प्रसाद का खर्चा कम आता है, 2-2.5 हज़ार में काम चल जाएगा, रहना भी हो जाएगा, प्रसाद भी मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम फ्री है। तो ऐसे बेसिस हमें नहीं खोलने चाहिए, है ना, ऐसे बेसिस नहीं खोलने चाहिए और ना ऐसे मंदिर खोलने चाहिए हमें। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि खासकर जो इसको समर्पित और ज्यादा समर्पित होना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत आवश्यक। तो प्रभुपाद ने कहा फिर ऐसे लोगों को बाहर रहकर वो लोग आए हम उनका स्वागत माला से करेंगे। प्रभुपाद ने बोला विल वेलकम देम विद गार्लैंड्स, दे कैन स्टे आउटसाइड, है ना, बट आश्रम अगर वो रहना चाहते हैं तो दे शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग सुबह की जो साधना है उसमें किसी प्रकार का समझौता ना करें, अपने लाइफ को इस तरह से मोल्ड करें, और अगर घर पे है तो घर पे भी हमारा जो है लाइफ को इस तरह से मोल्ड किया जाए कि सुबह हमारे पास कुछ तो साधना हमारी होनी चाहिए, कोई साधना जरूर होनी चाहिए हमारी। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज का क्लास हम थोड़ा छोटा ही रखेंगे क्योंकि महाराज अभी आने वाले हैं और महाराज केवल एक घंटे के लिए होंगे यहाँ पे, फिर आ गए हो, फिर महाराज एक घंटे बाद जा रहे हैं वृंदावन जा रहे हैं। तो ये पहला हम लोग जो शीर्षक ले रहे हैं दीक्षा, यहाँ पे आपने देखिए टॉपिक लिखा हुआ दीक्षा, व्हाट डज दीक्षा मीन, तो ये हम लोग टॉपिक ले रहे हैं आज। ये तो आपको हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था इस कोर्स के बारे में, तो कई बार लोग पूछते हैं हमारी ब्राह्मण दीक्षा क्यों नहीं हो रही, हमारा नाम क्यों नहीं आया, हम तो इतने साल से हैं, हमसे पहले ही ब्राह्मण दीक्षा उसको मिल रही है, है ना। प्रभुपाद से भी लोग पूछते थे प्रभुपाद इसको संन्यास पहले क्यों मिल रहा है, ये तो बाद में आया, ये तो एक साल ही हुआ है इसको संन्यास, इसको संन्यास दे रहे हैं आप, है ना, या ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं पहले ही, एक साल के अंदर ब्राह्मण दीक्षा हो गई, कई लोग दस दस साल से वेट कर रहे हैं कि ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई, और क्यों नहीं हुई, किस कारण से गुरु महाराज देने की इच्छा नहीं प्रकट करते। तो ये जो है मेन पॉइंट्स हैं, इसको हमेशा ध्यान रखना है, जो हमने बताया आपको 10-12 पॉइंट्स बताए, है ना, और ऑफ कोर्स रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तो नहीं ब्रेक की हमने इतने सालों में, है ना, हरिनाम लेने के बाद भी, तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तो पिलर है वास्तव में, वो तो बहुत जरूरी है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो जितना गंभीरता से फॉलो करेगा उसका साधना भी अच्छा होगा। चैंटिंग से डायरेक्ट कनेक्शन है इसका, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का, रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो जितना ब्रेक करेगा उसका चैंटिंग उतना ही खराब होता जाएगा, क्योंकि सातवां नाम अपराध क्या है, नाम के बल पर पाप करना, तो चार नियम जो तोड़ेगा उसकी चैंटिंग भी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। और हम देखा कई लोगों को चैंटिंग बंद होता जाता है उनका, कई साल हो गए दीक्षा भी हो गई लेकिन 16 माला का जप नहीं हो पा रहा है, संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में जो है आधार खराब रहा, बेस खराब रहा, चैंटिंग लिए दीक्षा ले ली लेकिन जप नहीं हो पा रहा, एक जगह बैठ के जप नहीं कर पा रहे, भक्तों के साथ बैठ के जप नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक बार जो चैंटिंग जब बिगड़ जाती है तो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है फिर, क्योंकि माइंड जो है आपका वैसे ही हो गया, रेगुलेट हो गया चैंटिंग के द्वारा, चैंटिंग ने रेगुलेट कर दिया आपके माइंड को कि आप इसी तरह से जप करो, आपने हरिनाम से यही मांगा, हरिनाम चिंतामणि है ना, तो हरिनाम से आप यही मांग रहे हैं कि मैं इसी तरह से जप करना चाहता हूं, बातें करते हुए, हवा में देखते हुए, आकाश में देखते हुए, दाएं तरफ देखते हुए, बाएं तरफ देखते हुए, या मतलब बहुत गंभीरता से ना लेते हुए जप करना, तो उससे क्या है कि फिर ये हरिनाम ही आपको आश्वासन दे देगा, आपको विश्वास दिला देगा कि ऐसे ही जप करो, और ऐसे जप करते करते दिन बीतते जाएंगे, धीरे धीरे फिर चैंटिंग भी खत्म हो जाती है। हम कई भक्तों जानते हैं जो वरिष्ठ भक्त भी हैं, कई सालों से भक्त हैं, जो 16 माला नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लोग हैं, एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, है ना, और गायत्री मंत्र लेने के बाद भी, ब्राह्मण दीक्षा के बाद भी गायत्री मंत्र भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं, कई सालों से दीक्षा हो गई उनकी। तो ये अगर कोई बहुत बड़ा अपराध हो सकता है गुरु के प्रति, तो सबसे बड़ा अपराध ये है कि जो संख्या जो है अपनी पूरी ना करना, महामंत्र का जप जो है उसकी संख्या पूरी ना करना, गायत्री मंत्र प्राप्त करके वो समय पर जप ना करना, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। प्रभुपाद ने बोला ऑफ ऑल द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र इज अ मोस्ट एसेंशियल, सबसे महत्वपूर्ण है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो अगर ये नहीं हो पा रहा है तो बाकी जितनी भी सेवाएं हैं वो सब क्या है, श्रम है वही केवलम, न उत्पादे यदि रतिम श्रम है वही केवलम, यूजलेस लेबर। हमने बड़ी मेहनत की और लोगों ने भी बड़ी तारीफ करी, तालियां भी बज गई, सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स भी मिल गए, लेकिन 16 माला नहीं हो पाए तो फायदा क्या हुआ, और साथ में 16 माला का जप हो रहा है, ध्यान पूर्वक भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सेवा नहीं कर रहे। कई ऐसे भी केसेस हैं 16 माला पूरी कर रहे हैं लेकिन सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते हैं, प्रचार नहीं करना चाहते हैं या सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी लाभ नहीं मिलेगा। क्यों लाभ नहीं मिलेगा? क्योंकि हरिनाम का उद्देश्य क्या है? हरिनाम प्रभु से हम क्या मांग रहे हैं? हमें सेवा दीजिए। जब सेवा आती है हम मना कर देते हैं, तो हरिनाम प्रभु बोलेंगे मुझे क्यों बुलाया? फिर सेवा के लिए मुझे बुलाया है, लेकिन जब मैं आता हूं तुम कहते हो मेरा टाइम ही नहीं है मेरे पास सेवा के लिए। जैसे आपके घर में अगर गेस्ट आ जाए और आप अपने बेडरूम में बैठे रहे और वो बाहर ही बैठे हुए हैं एक घंटे से दो घंटे से, तो बोलेंगे हमें बुलाए तो इंसल्ट है हमारा। तो इसी तरह से हम राधा रानी को बुला रहे हैं, कृष्ण को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं बार बार, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो लो सेवा लो। तो जैसे ही हम हरिनाम लेना शुरू करेंगे हमारे पास बहुत सेवाएं आएंगी, सेवा की कमी नहीं होगी, लेकिन जितना हम सेवा को अपनाएंगे उतनी सेवाएं बढ़ेंगी, जितना सेवा कम करेंगे उतनी सेवा कम होती जाएगी, और धीरे धीरे क्या होगा फिर 16 माला करना भी भारी हो जाएगा। जब सेवाओं से भागेंगे तो 16 माला करना भी भारी हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात है चार नियमों का पालन करना भी भारी हो जाएगा, और निश्चित है वो चार नियम भी तोड़ेगा। फिर जब चार नियम तोड़ेगा तो 16 माला का जप नहीं होगा, जब भी होगा तो ठीक से नहीं होगा, घसीट घसीट के होगा। इसे धीरे धीरे दुराए माया के पूरे चपेट में आ जाते हैं भक्त। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की। इसमें हमारे ट्रेडिशन में, हमारी जो परंपरा में दो प्रकार की दीक्षा हो रही है भक्तों। ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि में लिखा है, एक तो उन्होंने बताया है नाम दीक्षा और दूसरा है मंत्र दीक्षा। अधिकतर जो है जो हरिनाम देते हैं वही गायत्री मंत्र भी देते हैं आगे चलकर, तो उनको नाम गुरु कहा जाता है। जब सबसे पहले हम नाम दीक्षा लेते हैं तो उनको नाम गुरु कहा जाता है, और बाद में जब मंत्र दीक्षा लेते हैं तो वो मंत्र दीक्षा गुरु होते हैं। पहले होती है नाम दीक्षा, फिर होती है मंत्र दीक्षा। तो ये भक्तों ठाकुर ने लिखा है, हरिनाम चिंतामणि में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार दीक्षा का अर्थ ये है कि दिव्य ज्ञान, दी का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, और श का मतलब क्षति, अज्ञानता के द्वारा अंधकार की क्षति, अज्ञानता की क्षति होती है, और दिव्य ज्ञान। अच्छा, अब इसमें देखिए तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक होता है मंत्र या हरिनाम, और दूसरे हैं गुरु जो आपको हरिनाम दे रहे हैं या मंत्र दे रहे हैं, और तीसरा है अर्च वगैरह डीटी या आपका ईष्ट, आपके जो ईष्ट हैं। तो ये मंत्र है वास्तव में जो उसका उच्चारण किया जाता है ये गुरु का ही रिप्रेजेंटेटिव है, गुरु को ही रिप्रेजेंट करता है मंत्र। तो मंत्र में साथ उसी मंत्र में हमारे इष्ट भी छुपे हुए हैं, और जीव गोस्वामी बता रहे हैं उनके मतानुसार, जीव गोस्वामी कहते हैं कि इन द ओपिनियन ऑफ भागवतम देयर इज नो एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ फॉलोइंग द मैसेज ऑफ पांचरात्र सच एज आर्चन, इवन विदाउट देम वन कैन अचीव फुल परफेक्शन लाइफ सिंपली बाय प्रैक्टिसिंग इवन वन ऑफ द 9 मेथड्स ऑफ डिवोशनल सर्विस सच एज सरेंडर। तो कह रहे हैं कि नवदा भक्ति का कोई भी अंग पालन किया जाए तो सब सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और पांचरात्रि विधि करने की इतनी आवश्यकता नहीं है ऐसे भागवत बताता है। लेकिन जीव गोस्वामी ने यह बताया है कि नारद जी जैसे महान जो महाजन हुए हैं, नारद जी ने क्या किया, उन्होंने भी पांचरात्रि विधि का पालन किया, भगवान की शरण ग्रहण करी और भगवान से संबंध स्थापित किया। नारद जी का कहना यह है कि अगर भगवान से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उनकी लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए हरिनाम लेने के लिए भी दीक्षा की आवश्यकता है, यानी कि दीक्षा की आवश्यकता कहने का अर्थ है हरिनाम। जैसे हरिनाम के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, हरिनाम आप दीक्षा से पहले भी लेते हैं, है कि नहीं, सभी लेते हैं, लेकिन फिर भी हरिनाम के लिए दीक्षा लेने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये हरिनाम हम शुद्ध भक्त से लेते हैं, गुरु से लेते हैं, तो हमें और बल प्राप्त होता है हरिनाम लेने में, और जब गुरु से हरिनाम प्राप्त होता है तो जी गोस्वामी और विश्वनाथ ठाकुर दोनों का मत है, तब जाके जो है ये हमें ले जाए लक्ष्य की तरफ ले जाएगा कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा गुरु से संबंध क्या है, हमारे इष्ट कौन है, तो ये तब उस लक्ष्य तक हमें ले जा सकता है। नहीं तो बिना दीक्षा के अब केवल अधिक से अधिक नामाभास की स्थिति में पहुंच सकते हैं, लेकिन अब शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंचना है तो उसके लिए निश्चित रूप से गुरु की कृपा आवश्यक है। इसलिए हरिनाम के लिए भी दीक्षा लेना अनिवार्य है, तो ये बहुत आवश्यक है। तो यहां पर ये जीव गोस्वामी का मत है। और साथ में जीव गोस्वामी एक और बात बता रहे हैं कि दीक्षा और शिक्षा, तो शिक्षा का भी लाभ तभी मिलता है जब किसी ने दीक्षा ली हो। जिसको मंत्र मिला है गुरु से, वो मंत्र मिलने पर ही वो वास्तव में दिव्य ज्ञान को समझ पाएगा या शिक्षा को समझ पाएगा। मान लीजिए दीक्षा गुरु आपने बनाया किसी को और आपके कोई और शिक्षा गुरु है, ठीक है, तो शिक्षा गुरु की बात को भी हम समझ पाएंगे जब हमारा संबंध होगा कोई दीक्षा गुरु से। दीक्षा गुरु से जो मंत्र प्राप्त होता है वो हमें शक्ति प्रदान करता है शिक्षा को समझने के लिए, दिव्य ज्ञान को समझने के लिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अगर मैंने दीक्षा ली है किसी से, किसी गुरु से, और अगर उनकी शिक्षा में, दीक्षा गुरु की शिक्षा में और या अन्य किसी शिक्षा गुरु की शिक्षा में भेद है, तो फिर वो जो शिक्षा गुरु है वो मेरा शिक्षा गुरु नहीं है। फिर ये प्रभुपाद ने जगह लिखा है चिट्ठी में, ये चिट्ठी लिखी थी प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल को गलीमदास, तो उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति को शिक्षा गुरु नहीं बना सकता जिसकी शिक्षा में भेद है, दीक्षा गुरु की शिक्षा में और शिक्षा गुरु की शिक्षा में भेद है, तो ऐसे शिक्षा गुरु को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कहने का अर्थ है कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में तब अंतर नहीं माना जाता जब दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के शिक्षाओं में कोई भेद नहीं, शिक्षा गुरु वही बोल रहा है जो दीक्षा गुरु बोल रहे हैं, तब वो शिक्षा गुरु आपका शिक्षा गुरु है। और दूसरे केस में कहीं से शिक्षा भी अगर लेते हैं तो वो दीक्षा गुरु के द्वारा कंफर्म होना चाहिए। ये भजनामृत में नरहरि सरकार ठाकुर ने बताया, उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। मान लीजिए आप शिक्षा लेने जाते हैं, एक व्यक्ति है घर में, लड़का है, बड़ा हो गया, कमाने जाता है, अलग अलग जगह से वो कमाता है और कमा के वो सारा धन किसकी सेवा में लगाता है, पिता की सेवा में लगाता है और बदले में थोड़ा उसको कुछ मिल जाता है। लेकिन दूसरा लड़का है वो कमा रहा है लेकिन घर में एक चवन्नी भी नहीं देता, वो अपने पिता को लगे कुछ एक चवन्नी भी नहीं देता, वो सारा का सारा अपने पास रख लेता है, तो वो शिक्षा जो है बड़ी खतरनाक है। इसलिए साथ में शिक्षा को लेने के बाद ये बहुत आवश्यक है कि शिष्य जो है अपने दीक्षा गुरु से उसको कंफर्म करे, ये मैंने शिक्षा ली है या मेरे लिए ठीक है। लेकिन अधिकांश भक्त ऐसा नहीं करते हैं, तो इसलिए क्या है वो धीरे धीरे कंफ्यूज होने लगते हैं उनकी। और से नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि उनकी श्रद्धा अपने दीक्षा गुरु के प्रति कम होने लगती है और फिर वो सोचते हैं दीक्षा गुरु शायद हमारे उस लेवल में नहीं है, वो अपराध करने लगते हैं। तो इसलिए दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में समानता है तभी देख पाएंगे जब हम लोग दीक्षा गुरु से उसको कंफर्म करेंगे। तो ये कंफर्मेशन करने के लिए एक तो नरहरि सरकार ठाकुर है, उन्होंने बताया है, और दूसरा जैन धर्म में भी भक्त ठाकुर कहते हैं कि कोई उन्नत वैष्णव के पास जा सकता है दीक्षा लेने के बाद, अगर वो जाना चाहता है उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दीक्षा गुरु से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये क्लियर लिखा है भक्त ठाकुर ने। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग अगर आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। कई जगह पर तो बहुत गलत ही प्रचार हो रहा है और गलत सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है, हमने सुना तो हम हैरान हो गए। जो दीक्षित भक्त है उनसे हमने पूछा कि बताइए अंतर क्या है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में, कौन महत्वपूर्ण है? तो उन्होंने कहा कि शिक्षा गुरु ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने कहा पूछा क्यों, बोलते शिक्षा गुरु हमें ज्यादा समय देते हैं इसलिए। मैंने कहा बचपन में आपके माता पिता आपको ज्यादा समय देते तो आप माता पिता के पास चले जाओ, आप अपने भाई के पास चले जाओ, है ना, या आप किसी मित्र के पास चले जाओ, बाहर भी बहुत सारे मित्र हैं जो आपको बहुत समय देते थे, केवल समय देते इसलिए आपके वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए शिक्षा गुरु, ये तो कोई बात नहीं हुई, है ना। समय दीक्षा गुरु देते हैं या गुरु समय देते हैं अपनी वाणी के द्वारा, और जितने वाणी का कोई पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है, उसी के लिए वो गुरु सबसे करीब में रहते हैं। भले शिक्षा गुरु आपके बहुत करीब हो लेकिन उसकी शिक्षा में अगर भेद है और दीक्षा गुरु से मेल नहीं खाता है तो वो पास रहते हुए बहुत दूर है, अपने दीक्षा गुरु से बहुत दूर चला जाता है फिर, और धीरे धीरे क्या होगा वो दीक्षा गुरु में दोष देने लग जाएगा और उसके अपराध बढ़ेंगे। और ऐसे शिक्षा गुरु जो इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं वो खुद ही माया में गिरेंगे, दूसरों को भी माया में ले जाएंगे, तो ऐसे प्रचार बड़ा खतरनाक होता है। और कई बार ऐसे देखा गया है कि काउंसलर सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, काउंसलर सिस्टम में प्रॉब्लम यही आ रही है कि वो शिक्षा गुरु का स्थान तो उनको मिल गया, काउंसलर गुरु काउंसलर बन गए, लेकिन ये भूल रहे हैं कि शिक्षा गुरु को बनाया गया है, खुद बने नहीं है, है ना। और कभी भी वो शक्ति उनसे वापस ले जा सकती है, और जिस ले ली गई और दूसरे तो यही खोखले, खुद भी खोखले हो जाएंगे। तो बेसिकली शिक्षा गुरु जो है ऑथराइज होने चाहिए दीक्षा गुरु के द्वारा, और साथ में बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, जितने भी भक्त हैं उनको संस्था से, मंदिर के अधिकारियों से, यानी कि इस आंदोलन से जोड़ना है भक्तों को, भक्तों को आंदोलन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, इस प्रकार का हमारा प्रचार होना चाहिए, तो तब जाके जो है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं आएगा।
गुरु जी भक्ति इस फॉर्म में ही किसी और से शिक्षा लेना चाहते हैं तो गुरु महाराज के पास मान लो जाते हैं, तो महाराज तो ऐसी स्थिति में कई बार मना करने में नहीं होते, मना करने की स्थिति में नहीं होते, ऐसी स्थिति में होते हो क्या करते?
शिष्य को हमेशा समझना चाहिए दीक्षा गुरु क्या चाहते हैं, अपने गुरु क्या चाहते हैं, जिनसे दीक्षा ली हमने उनकी इच्छा क्या है ना। हो सकता है कि इस वजह से भी ना कह रहे हो आपको, क्योंकि आपके मन में इतना ज्यादा प्रभाव पड़ गया है शिक्षा गुरु का कि अगर आपको मना कर दें तो आप छोड़ के भाग जाएं, है ना। बीमारी इतनी बढ़ गई है कि अगर उसको कुछ ज्यादा किया जाए तो क्या ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ जाएगी फिर। तो इस वजह से कई बार गुरु बोलते नहीं, लेकिन इसलिए शिष्य को चाहिए वो पूछे अपने गुरु से कि मेरे लिए अच्छा क्या है बताइए, अगर वो वास्तव में प्रकृति चाहते हैं। नहीं तो फिर क्या है कि गुरु तो आपको बताएंगे भी तो आपको गलत लगेगा, अगर आप बोलेंगे कि नहीं ये किताब मत पढ़ो आप इनके बाद मत जाओ तो आपको लगेगा कि नहीं गुरु ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप गुरु को ही गलत दृष्टिकोण से देखने लग जाएंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग शुरू से ही दीक्षा लेने से पहले ही और जो भी हमारे जो ग्रुप प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें भी हम इस प्रकार का जो है एजुकेट करें लोगों को कि वास्तव में असली फिलॉसफी क्या है, कि आप सबको दीक्षा लेकर जो है दीक्षा गुरु के प्रति समर्पित होना है। और हाँ, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम छोटी छोटी बातों के लिए, क्या हम कपड़ा धो सकते हैं, क्या कमरा साफ कर सकते हैं, क्या बर्तन धो ले हम, उसके लिए गुरु के पास जा रहे हैं, है ना, क्या हम नहा ले, तो इस प्रकार जो है ना, इस प्रकार भी नहीं जाना चाहिए गुरु के पास। इससे भी क्या है कि हम लोग गुरु को हम लोग बहुत चीप ले रहे हैं इसका मतलब। तो इसका अर्थ केवल यही है कि हम लोग जिम्मेदारियां लें और गुरु के पास तब जाएं जब हमारे पास कुछ देने के लिए हो, ऑफर करने के लिए हो, है ना। और कोई समस्या आ रही है जेन्युइन तो अलग बात है, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए अगर गुरु को परेशान करेंगे तो फिर आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये दोनों बातें ही बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर कोई भक्त है मिलना चाहता है अपने दीक्षा गुरु से तो उसको मिलने दिया जाए, ये नहीं कि उसको रोको आप, नहीं अब आपको 5 साल रुकना पड़ेगा दीक्षा गुरु से मिलने के लिए क्योंकि मैं अब आपका काउंसलर हूं, है ना। तो दीक्षा गुरु से मिल सकता है, उसको मिलने देना चाहिए, बस ये है कि वो जो भक्त है वो बता के जाए अपने काउंसलर को कि गुरु महाराज ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना है, तो हो जाए, बस इतनी सी बात है। तो इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन हो और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं क्योंकि ये दीक्षा से रिलेटेड है, आज दीक्षा के बारे में बता रहे थे इसलिए यह आवश्यक है। तो यहां पर लिखा है ये जो हम लोग ले रहे हैं बेसिक सिलेबस, ये सचिदानंद महाराज की बुक है गायत्री बुक, इसी को बेस बनाते हुए लिया हमने। तो महाराज सारी बातें इसमें कर रहे हैं तो इस वजह से हम बता रहे हैं आपको ये सारा। तो वह दीक्षा सेरेमनी फॉर्मलाइजेस अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्टेड बिफोर द सेरेमनी, मतलब क्या है इसका कि दीक्षा वो क्या कहते हैं प्रोसेस है, विधान है, जो वास्तव में जो हमारा पूरा पुराना संबंध है उसी संबंध को औपचारिक रूप से स्थापित कर रहा है दीक्षा। तो दीक्षा के द्वारा जो है ये औपचारिक रूप से वो संबंध स्थापित हो जाता है, लेकिन जैसे इसमें सब कुछ औपचारिक नहीं है, मंत्र का उच्चारण औपचारिक नहीं है, है ना, आज्ञा का पालन करना, चार नियमों का पालन करना ये औपचारिक नहीं है, इसको करना पड़ेगा, तो ये संस्कार आवश्यक है। और दूसरा ये है कि दीक्षा जो हम लेते हैं वो प्रमाणिक संप्रदाय से हम लोग लेते हैं, मंत्र जो है दीक्षा मंत्र जो है अगर हम प्रमाणिक संप्रदाय से नहीं लेते हैं तो उसका लाभ नहीं मिलता है। आजकल तो गायत्री मंत्र ऐसे उच्चारण करते हैं लोग जैसे कीर्तन कर रहे हो लाउड स्पीकर में और जोर जोर से, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है, है ना। गायत्री मंत्र का उच्चारण जोर से अगर किया जाता है तो उससे अनर्थ कटते नहीं है, अनर्थ बढ़ते हैं, वो अनर्थ हो जाता है उससे, उसका रिजल्ट जो है उल्टा मिलता है जब गायत्री मंत्र का उच्चारण जोर से किया जाता है। तो और एक और बात है, हरिनाम से लिया प्रयास करना चाहिए, उसी से हम दूसरा हमारा दीक्षा भी ले, मंत्र दीक्षा भी ले। जब तक वो गुरु ना कहे कि नहीं मैंने हरिनाम तुम्हें दिया है, तुम आप जाके वहां से ले लो मंत्र दीक्षा, है ना। जैसे कि भक्तिनो ठाकुर ने किसको भेजा था, भक्ति सिद्धांत ठाकुर को भेजा था गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास, कि आप जाके वहां जाके दीक्षा लो। भक्तिनो ठाकुर दे सकते थे खुद ही, लेकिन शिक्षा के लिए, समाज की शिक्षा के लिए उन्होंने भेजा, उनके पास भेजा। अगर ऐसा नहीं है तो जिनसे हरिनाम लिया है उन्हीं से ही लेना होता है, नहीं तो अपराध लग जाएगा फिर। हाँ, गिरधर पंडित जब वो उनसे दीक्षा ले ली पुंडलिक विद्यानिधि से, तो उन्होंने वो गायत्री मंत्र को उसको सुना दिया, तो वो महाप्रभु के पास जाते हैं। महाप्रभु बोलते हैं, महाप्रभु कि मैंने जो है इस प्रकार मंत्र बोल दिया किसी को, तो उसका जो पावर है वो कम हो गया है, उसका इफेक्ट जो है कम हो गया है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे दे दें वो मंत्र दोबारा। तो महाप्रभु कहते हैं, अंत्यखंड की बात चैतन्य भागवत में लिखा है, महाप्रभु कहते हैं कि मुझसे अपराध मत कराओ, जाओ वापस उन्हीं के पास जिनसे मंत्र लिया उन्हीं से लो दोबारा, मेरे से अपराध मत करो। तो बेसिकली रीइनिशिएशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इस प्रसंग से बिल्कुल क्लियर होता है कि जिससे आपने हरिनाम लिया है उसी से ही आपको दोबारा दीक्षा लेनी है, यानी कि दूसरी दीक्षा लेनी है, या दोबारा भी मंत्र लेना है जाकर किसी भी कारणवश, तो उन्हीं से जाकर लेना है। ये महाप्रभु बोल रहे हैं गदाधर पंडित को कि आप जाओ दोबारा उन्हीं से लो, मुझसे अपराध मत कराओ, क्योंकि तुम्हारे गुरु अभी हैं, जीवित हैं, और स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी, है ना। उनका कोई पतन थोड़ा हुआ है कि आप मेरे पास आ रहे हो मंत्र दीक्षा के लिए। तो ये एक प्रकार का क्या कहते हैं, डिसऑनर है, डिसरिगार्ड कर रहे हैं हम गुरु को, ये उस गुरु के लिए अनादर है और उस गुरु के प्रति अपराध है जिन्होंने हरिनाम दिया है, और उनको छोड़कर हम कहीं और जाके दीक्षा लेते हैं दोबारा। तो इस प्रकार बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंत्र दीक्षा के बाद हमारा जो संबंध है गुरु से और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, और भी गंभीर हो जाता है, और ज्यादा हम लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, नहीं तो और रिएक्शन लेना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना है कि दीक्षा के मामले में, कि दीक्षा के मामले में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर लिखते हैं, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, सही धे करे चातार तारे चिदानंद मोय, अप्राकृत देह तार चरण भजोय। दीक्षा के समय जब भक्त शरणागत होता है भगवान की सेवा में, तो कृष्ण ऐसे शिष्य को अपने जैसा मानते हैं। ऐसे में भक्त का जो शरीर है वो चिन्मय बन जाता है, और भक्त ऐसे चिन्मय शरीर में भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है। और ऐसी औपचारिक दीक्षा न ही केवल गुरु और शिष्य के बीच में होती है, बल्कि शिष्य और कृष्ण के बीच में होती है। तो दूसरी दीक्षा का मतलब यह है कि प्रभुपाद ने बताया, सेकेंड इनिशिएशन मीन्स इज रिकॉग्नाइज नाउ इज बिकम अ फुली कॉम्पिटेंट वैष्णव, क्योंकि अब वो अर्चे वगैरह की सेवा भी कर रहा है, गुरु की सेवा भी कर रहा है, गायत्री मंत्र का उच्चारण भी कर रहा है, तो सब कुछ तो मिल गया उसको, सब कुछ तो मिल गया, यानी कि अब वैष्णव बनने के लिए वो तैयार हो जाए। अ बेल मेटल व्हेन मिक्स्ड विद मर्क्यूरी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गोल्ड सिंपली बाय इनिशिएशन प्रोसेस। अ पर्सन इवन दो नॉट गोल्डन प्योर कैन बी ट्रांसफॉर्म टू ब्राह्मण और द्विज। तो इस प्रकार मर्क्यूरी को गोल्ड बनाया जाता है, इसी तरह से बेल मेटल को बनाया जाता है, इसी तरह से दीक्षा विधान के द्वारा किसी को भी ब्राह्मण बनाया जा सकता है। तो इसलिए ये भी एक संस्कार है, कई प्रकार के संस्कारों में ये भी संस्कार है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये दीक्षा जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, दीक्षा ग्रहण करना, शिक्षा और दीक्षा दोनों ही आवश्यक है, और उसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। और जिससे हम लोग मंत्र लेते हैं उसके लिए हमें और जिम्मेदार बनना पड़ता है। तो ये था कुछ दीक्षा के बारे में। इसमें कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम विराम दे रहे हैं यहीं पे। हम
देखा गया लोग शिक्षा को बहुत ज्यादा मतलब देते हैं, दीक्षा को मतलब ही नहीं दे रहे, कई बार ऐसा देखा गया
और बताया वो। इसलिए ये कन्फ्यूजन दूर किया जाना चाहिए, या तो मंदिर के अधिकारी दूर करें, और दूसरी बात है कि जब ये कन्फ्यूजन शुरू होता है उसी समय से समाप्त करना चाहिए, क्योंकि एक बार ये बढ़ गया और उसके कई फॉलोअर्स बन गए तो समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर वो व्यक्ति गया तो साथ में उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो भी जाएंगे साथ में गलत शिक्षा लेकर। इसलिए शुरू में अगर कोई भी ऐसे लक्षण नजर आते हैं पहले दिन ही उसको रोकना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि आप गलत चल रहे हैं और गलत शिक्षा दे रहे हैं। ये पॉइंट, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या, एक सूक्ष्म अनर्थ होता है, उसको कहते हैं तरंग रंगनी, भक्ति उथ अनर्थ, विश्वनाथ जी ठाकुर ने कहा है। तो इसमें क्या है कि भक्त जब प्रचार करने लगता है तो स्वाभाविक है कि भक्त लोग कहीं आते हैं सुनने के लिए, सेवा करने के लिए, तो तरंग रंगनी में फंस जाता है वो, यानी कि लाभ पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा में। तो फिर लाभ पूजा प्रतिष्ठा जब बहुत मिलने लगती है तो उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो इतना ज्यादा हो जाता है प्रबल कि वो फिर अपने दीक्षा गुरु को भूल जाता हो। तो इसका मतलब क्या है कि उसके दिन पूरे होने लगे, कुछ ही दिनों के लिए मेहमान है आध्यात्मिक जगत में फिर वो। तो इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम जब प्रचार करते हैं, प्रचार करने का मतलब यह है कि हम लोग उस भक्ति की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उस जीव की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, और अगर हम उसको गलत शिक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए हमें भुगतना पड़ेगा। अगर हम उसको अपने गुरु से नहीं जोड़ रहे हैं या खुद से जोड़ रहे हैं तो फिर क्या होगा, उसका परिणाम ही होगा कि हम तो माया में गिरेंगे, वो सभी माया में गिरेंगे। ये हुआ है और हमने देखा है, होते हुए हमने इसी संस्था में कई भक्तों को देखा अपने आंखों के सामने, जिन्होंने ठीक से कंग्रीगेशन को या अपने ही जो उनके डिवोटीज थे साथ में उनको नहीं जोड़ा, और जब वो गए तो सब साथ में चले गए, उनके पूरी सेना ही चलेगी साथ में। तो इसका मतलब उस सेना को प्रॉपर क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन नहीं था, एजुकेशन नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी, कि उनको बताया नहीं गया कि आप लोगों को मुझसे नहीं संस्था से जुड़ना है, मुझे तो केवल एक निमित्त बनाया गया है ताकि आप लोगों को जोड़ा जा सके। तो ये बहुत आवश्यक है इस बात को समझाना। तो इसलिए कि रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए और रेगुलर क्लासेस होने चाहिए, ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए जिससे हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके, लोगों को बता सकें कि वास्तव में असली पिक्चर क्या है, कंसेप्शन क्या है। हाँ जी,
जैसे कि आपने बताया कि किसी से पूछा था कि शिक्षा लोग है तो क्यों नहीं शिक्षा लोग, उसने शिक्षा लोग को बोला और उसका उत्तर जो था उसके स्थान पर उत्तर देता कि भक्ति सिद्धांत माना था कि शिक्षा जो लिखी है वो शिक्षा लोग के आधार पर है।
नहीं, भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने शिक्षा गुरु के परम आधार पर नहीं लिखा है, केवल उसमें दोनों है, भागवत विधि और पांच रात्रि की विधि। भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने जो स्थापित किया है वो है भागवत विधि और पांच रात्रि की विधि। तो भागवत विधि में शिक्षा का महत्वपूर्ण होता है, महत्व होता है, और पांच रात्रि की विधि में दीक्षा होती है। तो दोनों ही उन्होंने लिखा है। उन्होंने जब गौड़े मठ की स्थापना की तो उन्होंने रेलवे लाइन बनाया, लोगों जो बनाया उन्होंने मृदंग दिखाया, सबको दिखाया, उन्होंने रेलवे लाइन दिखाई, रेलवे की पटरी दिखाई। उन्होंने कहा कि दो लाइन है, एक लाइन है भागवत विधि, एक लाइन है पांच रात्रि की विधि। तो दीक्षा और शिक्षा दोनों साथ साथ चलने चाहिए, ये बताया भक्ति सिद्धांत महाराज ने। तो जितने भी लोग दीक्षा गुरु है, हमारे आचार्य लोग शिक्षा देते हैं या जो शिक्षा गुरु हैं, उन सबने दीक्षा ली है। ऐसा कोई आचार्य नहीं जैसे दीक्षा ना ली हो, हमारी परंपरा में सबने दीक्षा ली है। लेकिन क्या है कि कई बार ऐसी परंपरा की स्थापना करनी पड़ती है जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने किया, ये दिखाने के लिए कि महापुरुष के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इन आचार्यों ने विशेष सहयोग दिया है। जैसे विपिन बिहारी गोस्वामी, इनके दीक्षा गुरु है भक्त ठाकुर। अब उसमें कोई खास मतभेद नहीं हुआ है, लेकिन उसको सुनाया जाता है ऐसे कि जैसे बहुत बड़ा मतभेद हो गया। उसमें सिर्फ यही भेद आया कि उन्होंने बोला गंगा जी के पश्चिम दिशा में नवद्वीप, और भक्ति सिद्धांत महाराज ने स्थापित किया, भक्ति ठाकुर ने स्थापित किया कि भक्ति ठाकुर ने साबित किया कि पूर्वी दिशा में गंगा जी के पूर्वी दिशा में नवद्वीप है, मायापुर, यानी कि मायापुर है, तो मायापुर जन्म स्थान जो महापुरु का। तो वही केवल डिफरेंसेस आया और कोई डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि जब हमने पढ़ा जीवन चरित्र, पढ़ा भक्ति ठाकुर का, तो जब उन्होंने मंदिर बनवाया था, डीटी इंस्टॉलेशन किया था योगपीठ में, पंचतत्व और साथ में विश्वप्रिया लक्ष्मीप्रिया महापुरु का जो डीटी इंस्टॉल किया है भक्ति ठाकुर ने, तो उस मंदिर के उद्घाटन में इंस्टॉलेशन सेरेमनी में विपिन बिहारी गोस्वामी भी आए थे, सब आए थे उसमें, उसमें नाम लिखे हुए कौन कौन आया था। अगर विपिन बिहारी गोस्वामी से उनका नहीं बन रहा था तो वो क्यों आए वहां पर। तो वो तो कई बार इस प्रकार के डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने, कई लोग रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने। लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने स्थान को प्रमाणित किया योगपीठ को, इसलिए उनको शिक्षा के रूप में स्वीकार किया, बस यही बात, और की बात ही नहीं। क्योंकि वो अपने कन्वीनियंस के बताते हैं। हमें होता क्या है कि जहां हमें जो कन्वीनियंट लगता है हम लोग उसको लेकर जो है अपने लिए अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे आचार्य ने ऐसे किया है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। भक्ति ठाकुर ने नवदी धाम भी प्रकट किया, आप भी प्रकट करो ना फिर। भक्ति ठाकुर ने जनस्थानी पता लगाया, उन्होंने 100 किताबें में लिखी, आप भी लिखो। आचार्यों की नकल करना चाहते हो सब कुछ करो ना, ये थोड़ा जो मेरे लिए कंफर्टेबल है वो मैं ले लूंगा उनसे। इसको कहते हैं पिक एंड चूज फिलॉसफी। ये साधना नहीं है, ना भजन है, ना इससे साधु की प्राप्ति होगी, है ना। ओ इनका मंजरी भाव का जो है ना प्रोसेस बड़ा अच्छा है, मैं इनसे ये ले लेता हूँ, है ना। इनका थोड़ा शॉर्टकट लगता है, मैं इनसे ले लेता हूँ, ये यहाँ इनसे ले लेता हूँ। तो अलग अलग परंपरा से, अलग अलग भजन प्रणाली से, अलग अलग जो है ले लिया, सिस्टम ले लिया और अपने लिए जो कन्वीनियंट है उसको लागू कर लिया। हमारी एक ही पद्धति है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के द्वारा जो पद्धति है वो उनकी शिक्षाओं को लेकर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, वो भजन प्रणाली हमारी। ये नहीं कि हम लोग 10 भजन प्रणाली एस्टेब्लिश कर लें, एक किताब में लिख लें सारी प्रणाली और जहां जो अच्छा लग रहा है उसको लेकर अपने लिए अप्लाई कर लें तो हम सोचेंगे कि हमें स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। इतना चीप नहीं है। जिनसे मंत्र लिया है उस प्रणाली में हमें चलना पड़ेगा या उनके द्वारा बताए हुए रास्ते में चलना पड़ेगा। दीक्षा हमने किसी से ली और प्रणाली को अपना रहे, या जो अच्छा लग रहा है यहां से ले लिया थोड़ा बहुत, थोड़ा वहां से ले लिया, थोड़ा यहां से ले लिया, थोड़ा वहां से ले लिया, तो उसमें क्या है कि फिर ना घर के ना घाट के। तो इसलिए क्या है कि हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसलिए भक्त ठाकुर ने लिखा है अनर्थों का वर्णन करते हुए, साधन साध्य भ्रम। साधन साध्य भ्रम भी एक अनर्थ है, मतलब या तो साधना के बारे में उसका क्लियर नहीं कंसेप्शन, या साध्य के बारे में कंसेप्शन क्लियर नहीं है, विचार क्लियर नहीं है। तो साधना तो कर रहा है लेकिन गोल पता नहीं उसको, साध्य का पता है लेकिन साधना पता नहीं क्या करनी है, दोनों तरह से कंफ्यूज है वो। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने जो प्रभुपाद ने इसलिए बोला नेक्टर ऑफ डिवोशन दिखा के, दिस इज लॉ बुक ऑफ इस्कॉन फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। तो क्यों बोला लॉ बुक? क्योंकि वो जो प्रोसेस जो रूप गोस्वामी ने दिया है वो हमें फॉलो करना है। ये नहीं कि कोई नए नए सिस्टम आ रहे हैं, आजकल शॉर्टकट भी आ गया है, डिस्काउंट भी मिल रहा है आजकल कृष्ण प्रेम के लिए। आइए हमारे साथ, आपको जल्दी कृष्ण प्रेम दिलाते हैं, इसको हमें बहुत टाइम लगता है कृष्ण प्रेम मिलने में, है ना। हम आपको जल्दी शॉर्टकट दिला रहे हैं, कम विद अस। वहां आपको 7 मंत्र मिलते हैं, हम आपको 20 मंत्र दिलाएं। तो ये कोई मतलब सबरी मंडी थोड़ा है आजादपुर, जहां चले गए कभी आलू खरीद लिया, कभी मटर खरीद लिया, कभी ये खरीद लिया, गाजर मूली टिंडा खरीद लिया। तो इसलिए क्या है कि बेसिकली जो प्रोसेस हमें दिया गया आचार्यों के द्वारा, कोई भी कंफ्यूजन होता है हम आचार्य उसको रेफर करें। आजकल बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है कि कनिष्ठों को तो लोग मान लेते हैं अपना गुरु और आचार्य, लेकिन जो असली आचार्य उनको भूल रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। कलयुग का लक्षण देखो आप, कलयुग की इतनी बड़ी समस्या है कि कनिष्ठ कनिष्ठ से कनिष्ठ भक्तों को जो है वो आचार्य बना लेते हैं लोग, यही सर्वस्व है, सब कुछ इनको ये समर्पित है, लेकिन जो बेचारे असली आचार्य दिन रात लगे हुए हैं उनके पास ना जाते हैं, ना उनसे कुछ पूछते हैं, ना उनको कुछ बताते हैं। देखिए भगवद गीता भगवान क्या बोल रहे हैं, आचार्य उपासना, आचार्य के निकट रहो, उनकी शिक्षाओं के निकट रहो। तो इसलिए क्या है कि कोई भी कंफ्यूजन होता है तो हमारे शास्त्र बोलते हैं महाजनो ये न गता सपनता, ये बोला गया है। षट गोस्वामी ने क्या शिक्षाएं दी है, महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी है, या गुरु परंपरा में आचार्य ने क्या शिक्षा दी है, क्या आप वही शिक्षा दे रहे हो मुझे? अगर वो आप शिक्षा नहीं दे रहे हो तो फिर क्यों नहीं शिक्षा दे रहे हो मुझे? तो इसका मतलब क्या है कि कुछ गड़बड़ है जरूर। तो हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए और दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु का कंसेप्ट बिल्कुल सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब मंत्र लेने वाले हैं अगर ये कंसेप्शन ही क्लियर नहीं है तो मंत्र लेने के बाद ही फायदा नहीं होगा। क्योंकि गोल हमारा केवल ब्राह्मण बनना नहीं है, ब्राह्मण तो वर्ण है, लेकिन जो मंत्र प्राप्त हो रहे हैं ये ब्राह्मण नहीं है, ये मंत्र आपको स्वरूप दिलाने वाला है, आपके जीवन के लक्ष्य को तक पहुंचाने वाला है मंत्र। और उसमें अगर कंसेप्शन क्लियर नहीं हुआ, गोल क्लियर नहीं हुआ, और आपके गुरु कौन है ये क्लियर नहीं हुआ अभी तक, मंत्र ले लिया है लेकिन ये भी निश्चित हो नहीं हो पाएगी गुरु कौन है हमारे, बताइए। बोलते हैं मंत्र तो ले ही लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, गायत्री मंत्र ले लेते हैं लेकिन गुरु से कोई संबंध नहीं है, गुरु कौन है अभी तक निश्चित नहीं है। दीक्षा लेने के बाद भी निश्चित नहीं हुआ अभी तक मेरे गुरु कौन है, कितना बड़ा कंफ्यूजन है। इसका मतलब उसका स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ही डेंजर में है, उसका स्पिरिचुअल लाइफ बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। इसलिए सबसे पहले जो है ये जो मंत्र लेने से पहले, ब्राह्मण दीक्षा लेने से पहले, सबसे पहले महत्वपूर्ण है अपना संबंध हम अच्छा स्थापित करें गुरु के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण। नहीं तो कई लोग मंत्र लेके घूम रहे हैं और राधा कुंड जा रहे हैं, कभी वृंदावन जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, बरसाया जा रहे हैं। अभी तक वो बेचारे कंफ्यूज है कि गुरु कौन है मेरे, मुझे असली गुरु कहां मिलेंगे। जैसे एक निताई दास थे प्रभुपाद जी के शिष्य थे उस जमाने, उन्होंने पूछ लिया प्रभुपाद से, प्रभुपाद ने रिजेक्ट कर दिया उनको कि प्रभुपाद मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक सिद्ध गुरु प्राप्त हो। प्रभुपाद ने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, लाखों जन्मों तक तुम्हें गुरु नहीं मिलेगा। प्रभुपाद ने बोला उनको ये बात, वो निश्चित नहीं है अभी तक कौन गुरु है, प्रभुपाद सामने बैठे हैं, प्रभुपाद को नहीं पहचान पा रहे वो। बताओ कितना बड़ा देखा, मतलब ये कहते हैं कि दुर्भाग्य है कि महाभागवत जब महापुरुष के पार्षद आगे प्रचार कर रहे हैं, पूरे संसार में स्थापित कर रहे हैं आंदोलन को, तभी हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि शक्ति को, बाप रे माया कितनी स्ट्रांग है देखो। इसलिए कई बार होता है अभी गुरु हमारे आगे, हम गुरु आगे ठीक है आए नहीं आए क्या फर्क पड़ता है ना, हम तो अपनी सेवा कर ही रहे हैं। तो सेवा तो बहुत अच्छी बात करना है, सेवा करना है, प्रचार करना है, लेकिन वो सेवा क्या हम गुरु के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, क्या वो प्रचार गुरु के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, वो क्लियर नहीं होता कंसेप्शन। तो इसलिए क्या है, जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, क्या कर रहे हैं उसका, क्योंकि गुरु के द्वारा जो साधना दी गई है उस साधना का अभ्यास ठीक से ना करना, साधना ठीक ना करना और अपना संबंध ठीक से स्थापित ना करना गुरु से। क्योंकि संबंध जब तक नहीं होगा तो सेवा शुरू नहीं होगी, और जब सेवा नहीं होगी तो प्रयोजन प्राप्त नहीं होगा, तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से क्या है, ये आवश्यक है इसको समझना बहुत, दीक्षा के महत्व को।
कई बार कोई भक्त लोग दीक्षा लेने के बावजूद भी वो कहीं और सन्यासी से अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या ये एक ऑफेंस है?
नहीं, ऑफेंस नहीं है, ये तो अच्छा है। जब भक्ति में कोई आगे बढ़ता है तो स्वाभाविक है उसका आकर्षण बढ़ता जाता है वैष्णव से, वो नेचुरल है। लेकिन उससे उसको कंफर्म करना है अपने गुरु से कि क्या मैं इनसे शिक्षा ले सकता हूं, और ये बहुत जरूरी है। जब तक गुरु इस धराधाम में है, फिजिकल प्लेटफॉर्म में है, मतलब फिजिकल प्लेटफॉर्म नहीं सॉरी फिजिकली अवेलेबल है, तो तब तक जो है मैं अच्छा संबंध बना लेना चाहिए, क्योंकि एक बार गुरु जब फिजिकली चले जाएंगे तो फिर तो बहुत कंफ्यूजन होगा। अगर हमारा संबंध नहीं हुआ ठीक गुरु से, अगर संबंध साबित नहीं हुआ उनके रहते हुए, तो जाने के बाद कहां से संबंध साबित हो जाएगा, या रहते हुए संबंध नहीं साबित हो रहा। तो जाने के बाद संबंध साबित हो सकता है, बशर्ते हम उनकी आज्ञा का पालन करें एज इट इज। जो उन्होंने बताया हमें जब वो जीवित थे यानी फिजिकली, तो जो शिक्षाएं दी थी उसका अगर हम पालन करें कंटिन्यू करें, तब तो हमारा गुरु से संबंध बढ़ सकता है उनके जाने के बाद भी, क्योंकि गुरु तो हमेशा है ही, इंटरनल प्रिंसिपल है, वो तो शाश्वत है, तो वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन कहने का हमारा तात्पर्य यह था कि गुरु से हमें संबंध ही नहीं बनाया, ना बनाना चाहा हमने कभी, तो फिर उनके जाने के बाद क्या करेंगे, और कमजोर पड़ जाएंगे हम। फिर नाना प्रकार के लोग अलग अलग बातें बताएंगे, नहीं नहीं हमारे गुरु महाराज तो ये चाहते थे, कोई बोलेगा नहीं ये चाहते थे, कोई बोलेगा नहीं ये चाहते थे, फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे, ये कौन सा बोल रहा है पता नहीं चलेगा। तो ये खतरा रहता है जब आचार्य लोग जाते हैं, तो ये खतरा बहुत आता है। इसलिए प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया जीबीसी बॉडी का भी, इसी वजह से बताया कि प्रभुपाद की बातों को कौन दोहराएगा, प्रभुपाद की बात को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो प्रभुपाद ने कहा ये रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया। तो इससे बहुत आवश्यक है कि हम लोग हर तरीके से गुरु से भी कनेक्टेड हैं, संस्था से भी कनेक्टेड हैं, और गुरु से हमारा रिलेशन अच्छा बने, है ना। गुरु से हम लोग भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने सजेस्ट किया है कि हर शिष्य का पर्सनल रिलेशन होना चाहिए गुरु से, व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए गुरु से। तो फिर उससे उस ऐसा करने से क्या होगा, हमारे मंत्र उच्चारण करने में, हरिनाम लेने में और सहायता मिलेगी, और अच्छी तरह से उच्चारण कर पाएंगे हम लोग बिना अपराध के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि समय आज ज्यादा हो गया था, लेट शुरू हुआ था। आपके कहने से तो रोकेगा नहीं हमेशा, लेकिन उसको आप सामने का ऑल्टरनेटिव दीजिए, उसको आप चैंटिंग का बॉक्स में दे दीजिए कि ये भी लगाइए आप, तो वो लगा लेगा फिर। अगर उसको रोकोगे तो फिर वो आपको रोक देगा, फिर
उल्टा हो जाएगा।
तो अब इसमें कई टॉपिक्स हैं, तो हम लोग अभी आने वाले जो थर्सडे को लेंगे क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मण, ठीक है, कभी रथ यात्रा कोई फेस्टिवल हो तो अलग बात है, वो मैं डिस्कस करके बता दूंगा कौन से दिन वो लेंगे, या बिल्कुल ही बाद में लेंगे या हफ्ते में एक दिन लेंगे, ये पता करना है सर मुझे। ऑल्टरनेटिव क्लास लेंगे या वो हो सकता है कि मेरे लेने के बाद लास्ट जो सेशन है वो ले, हाँ साथ साथ हो तो थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहेगा, वो अच्छा है ज्यादा, वो क्लियर कर दूंगा आपको थर्सडे को, क्लियर कर दूंगा। वैसे वो मैनुअल तो बना रहे, तैयार कर रहे हैं 3 महीने के लिए। 19 को बोर्ड फेस्टिवल है थर्सडे, अच्छा अच्छा, तो आप सब फॉर्म भर दीजिएगा, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उसे आप नंबर दे दीजिए, अगर कोई चेंज हुआ तो आपको बता दें, मैसेज दे देंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, चलो प्रभुपाद की जय, समय भक्त वृंद की जय।